HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहाँ कोई प्रतिमा ही ना हो, जहाँ किसी प्रतिमा की पूजा ही ना होती हो? प्रतिमा के बिना कैसा मंदिर? लेकिन एक मंदिर है और ये बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ देवी माँ ज्योता वाली माँ कहलाती हैं और सतयुग से 9 निरंतर प्रज्वलित ज्योतियों के रूप में वो यहाँ स्थित हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद में प्रसिद्ध ज्वालामुखी शक्ति पीठ के दर्शनों को, जिन्हें ज्वाला देवी भी कहा जाता है, जहां देवी माँ चमत्कारिक ज्योति रूप में स्थित रहती हैं। यहां की शक्ति है सती सिद्धिदा अंबिका तथा भैरव यानी शिव को उन्मत कहते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की जिह्वा का निपात हुआ था। माता की ज्वलंत जिह्वा गिरने के कारण ये स्थान प्राचीन काल से चमत्कारी और सिद्ध हो गया। देवी माँ की 9 ज्योतियाँ देवी माँ के ही 9 स्वरूप हैं। यहाँ सारी देवियाँ अपनी उग्र शक्तियों के साथ एक साथ विराजमान हैं। इन 9 ज्योतियों में सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वो ही ज्वाला माता है, जो स्वयं महाकाली का स्वरूप है। बाकी को अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। चट्टान में जल रही ज्योति अपने आप ही जलती है, इसे कोई जलाता नहीं है। ये जल कैसे रही है, ये एक अनसुलझी पहेली है। इसलिए यहाँ सभी वाणी की सिद्धियाँ, तांत्रिक सिद्धियाँ, सांसारिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बहुत से तपस्वी साधना में लीन पाए जाते हैं। ये स्थान यहाँ सतयुग से स्थापित है। कालांतर में यहाँ बहुत सी घटनाएं घटी, जिनकी बहुत सारी सुंदर कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। अपने अज्ञातवास के दौरान जब वो यहाँ आए थे, तब उन्होंने इस स्थान को देखा, यहाँ कुंड में स्नान किया और कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। दूसरी मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का पता दुर्गा देवी के एक महान भक्त और कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच को देवी माँ ने स्वयं सपने में आकर बताया था। वो इस स्थान को रोज स्वप्न में देखते थे। फिर राजा ने अपने सैनिकों को इस स्थल का पता लगाने के लिए भेजा, जो स्थान देवी ने बताया था। जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्हें स्वप्न में दिखने वाला स्थान यथार्थ में दिखा। तब राजा ने यहाँ मंदिर निर्माण करवाया और जनसाधारण को इसके विषय में बताया, जैसा कि माँ का आदेश था। उसके बाद कालांतर में इस स्थान को गुरु गोरखनाथ जी ने व्यवस्थित किया। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। ये गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली भी है। उन्होंने इस स्थान पर साधना करके योग का ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त की। ये एक चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पर एक चमत्कारिक कुंड है जिसका पानी खौल रहा है, पर जब उसको हाथ लगाते हैं तो वो ठंडा है। इस कुंड में भी पानी में 2 ज्योति लगातार जल रही हैं। एक स्थानीय कथा के अनुसार गुरु गोरखनाथ देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे। वे माँ की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और दिल से करते थे। कहते हैं कि माँ से उनका इतना प्रेम था कि वो बेटे की तरह उनका ध्यान रखती थी और साक्षात उनके साथ ही रहती थी। एक बार गोरखनाथ जी को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ का इंतजार करने लगी। पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौटे ही नहीं। कहा जाता है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत में वे वापस अवश्य आएंगे और तब तक ये ज्वाला यूं ही प्रज्वलित रहेगी और भक्तों का कल्याण करती रहेगी। माता से जुड़ी एक और कथा है जो स्थानीय लोगों में काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, उस समय ध्यानु नाम का एक माता का भक्त था जो माता की दिल से पूजा करता था। वो अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक बार जब वो सभी गांव वालों के साथ माता के दर्शन करने के लिए ज्वाला जी की ओर निकले, तब वो माता का जयकारा लगाते हुए दिल्ली से होकर गुजरने लगे तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोका और बादशाह के दरबार में पेश होने के लिए कहा। तब ध्यानु भक्त अपने सभी गांव वासियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा कि तुम सब कहां जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने उन्हें बताया कि वो सब ज्योता वाली माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम्हारी ये माँ क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु भक्त ने बड़े ही प्यार से उन्हें उत्तर दिया कि हे महाराज, वो तो सारी जगत की माँ है। वो बहुत शक्तिशाली और दयालु हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो माता रानी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ इतनी ही शक्तिशाली है तो इस घोड़े की गर्दन को दोबारा जोड़कर दिखाएं। ये सुनकर ध्यानु भक्त माता की स्तुति करने लगे। जब माता को आने में थोड़ा विलंब हुआ तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काट कर माता के चरणों में रख दी। उसी समय ध्यानु भक्त और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। ये देखकर अकबर हैरान हो गए। वो इस स्थान पर आए और उन्होंने इन ज्योतियों को बुझाने का हर संभव प्रयास किया। कहते हैं कि उसने एक बहुत भारी लोहे का तवा बनवाया और उल्टा करके मुख्य ज्योति पर रखा। ज्योति वो तवा फाड़ कर बाहर निकल आई और लोहा पिघल गया। अन्य ज्योतियों को बुझाने के भी उसने सब संभव प्रयास किए, जैसे ज्वालाओं के ऊपर पानी डालने का आदेश देना। उसने एक नहर भी निकलवाई और मंदिर को पानी में डुबा दिया, पर ये चमत्कारी लौ उसमें भी जलती रही। वो नदी आज भी है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन उसकी ये सभी कोशिशें असफल रही। फिर उसने माता की महिमा को स्वीकार किया और अभिमान से सवा मन सोने का छत्र लेकर चढ़ाया। जैसे ही वो माता के मंदिर में छत्र चढ़ाने लगा, तभी माता ने उस छत्र को नीचे गिरा दिया और उसे भी जला दिया। उसके बाद वो स्वर्ण के स्थान पर किसी और ही धातु में परिवर्तित हो गया। आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि आखिर वो छत्र किस धातु का बना हुआ है। वो छत्र आज भी इस मंदिर में रखा है और आप उसको देख सकते हैं। फिर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का किसी तरह से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वे भी इस भूगर्भ से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इसके निकलने का कारण क्या है और इसका मुख्य स्रोत कहाँ है। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ विज्ञानी इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, किंतु वो भी इस ज्वाला की जड़ तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। ये सभी बातें ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारिक रूप से भी निकलती है। नहीं तो आज यहाँ मंदिर के स्थान पर मशीनें लगी होती और शायद इस ऊर्जा का कहीं और इस्तेमाल हो रहा होता। हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों में कांगड़ा घाटी में कांगड़ा से 34 किलोमीटर तथा धर्मशाला से 56 किलोमीटर दूर कालीधर पर्वत की सुरम्य तलहटी में स्थित है ज्वाला देवी या ज्वालामुखी शक्तिपीठ। मंदिर के काफी पहले से ही प्रसाद की दुकानें लगी हैं, जहां विभिन्न प्रकार की प्रसाद की थालियां और चुनरी मिलती है। यहां माता को चुनरी भेंट करने की परंपरा है। आइए अब माता के दर्शनों को चलते हैं। इस मंदिर का वास्तुशिल्प अनूठा है। निर्माण में तराशी गई बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग हुआ है। सन 1905 में भूकंप आया था जिसने कांगड़ा घाटी को हिला कर रख दिया। अनेक भवन तथा अनेक मंदिर धराशायी हो गए, किंतु इस मंदिर को रंच मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर में प्रवेश हेतु मुख्य द्वार तक संगमरमर की सीढ़ियां हैं, फिर द्वार है। इस मंदिर के आंगन में प्रवेश करते ही एक दिव्य सुगंध महसूस होती है और एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर का दिव्य गुंबद सोने का बना है, जिसे राजा रंजीत सिंह जी ने बनवाया था। मुख्य द्वार चांदी का है। मुख्य मंदिर के सामने पीतल की एक बहुत बड़ी घंटी है, जिसे नेपाल के राजा ने भेंट किया था। मुख्य द्वार के सामने पीतल के दो बड़े बड़े सिंह बने हुए हैं, ये माता के द्वारपाल प्रतीत होते हैं। अंदर एक अहाता है, अहाते के बीच में एक मंदिर है। इसके अगल बगल देवी के धार्मिक कक्ष के रूप में अनेक भवन हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर 4 फीट ऊंचाई, 4 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई वाले प्राकृतिक पत्थर के रूप में शिलाएं हैं, जो सिंदूर से लिपटी हुई हैं। नीचे की ओर उन पर चांदी जड़ी है। यहाँ आप नीली केसरी दिव्य ज्योतियों के चमत्कारिक दर्शन करते हैं। बाई ओर से परिक्रमा प्रारंभ होती है। पहली ज्योति माँ चंडिका, दूसरी ज्योति माँ हिंगला, तीसरी माँ विंध्यवासिनी और इनके सामने सोने के आलय में माँ ज्वाला देवी विद्यमान है। ये ही वो स्थान है जहाँ पर माँ की जिह्वा गिरी थी। इनके साथ ही माँ अन्नपूर्णा ज्योति रूप में है। उसके आगे एक कुंड है जिसमें 2 ज्योतियाँ प्रज्वलित हो रही है, जो महालक्ष्मी और महासरस्वती के ज्योति स्वरूप हैं। भक्त का हृदय माता के इस चमत्कारिक रूप को देखकर भाव विह्वल हो जाता है। ज्वाला जी कई कश्मीरी पंडित परिवारों की इष्ट देवी हैं। इस मंदिर में दिन में 5 बार आरती होती है। मंगल आरती सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, पंच उपचार पूजन सुबह मंगल आरती के बाद होता है, भोग आरती दोपहर 11 से 12 बजे तक, संध्या आरती शाम 7 बजे से 8 बजे तक और शयन आरती रात 9 बजे से 10 बजे तक होती है। मंदिर के पास ही लंगर भवन है, जहां पर हर समय माता का भंडारा चलता रहता है। मंदिर के आसपास ही रहने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आप इस मंदिर तक आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा गगल है, जो कांगड़ा में ही है और ये मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रानीताल है। ये ज्वाला देवी मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग द्वारा भी आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बस और टैक्सी सेवाएं यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध है। जब आप यहाँ आए तो पास ही माँ चामुंडा देवी शक्ति पीठ भी है, उसके दर्शन अवश्य करें। साथ ही कांगड़ा किला, माता बगुलामुखी मंदिर जो तांत्रिक साधनाओं का मुख्य केंद्र है, बैजनाथ मंदिर जो अपनी हीलिंग पावर्स के लिए प्रसिद्ध है, कालेश्वर महादेव मंदिर, मैक्लोडगंज हिल स्टेशन आदि भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। 51 शक्तिपीठ विद निष्ठा के अगले एपिसोड में हम चलेंगे नेपाल के गंडकी शक्तिपीठ के दर्शनों को, जहां देवी सती का दायां गाल गिरा था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
This was an HD Smartcast original. HD Smartcast.